नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, वीविंग द वेब। टिम बर्नर्स-ली द्वारा मार्क फिशर्टी के सहयोग से लिखी गई वर्ल्ड वाइड वेब के जन्म, उसके शुरुआती विकास और उसके सामाजिक उद्देश्य का प्रत्यक्ष विवरण है। यह केवल तकनीकी इतिहास नहीं है, न ही इंटरनेट चलाने की मार्गदर्शिका है। पुस्तक एक आविष्कारक की स्मृतियों, डिजाइन सिद्धांतों और सार्वजनिक नीति पर विचारों को साथ रखती है। बर्नर्स-ली बताते हैं कि सर्न में बिखरी हुई जानकारी और लोगों के बीच संबंधों को समझने की समस्या ने उन्हें लिंक किए हुए दस्तावेजों की संभावना तक पहुंचाया। इसी सोच से एनक्वायर, फिर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब पते और ब्राउजर की दिशा बनी। पुस्तक का केंद्रीय उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि वेब को आरंभ से खुला, विकेंद्रीकृत और सहभागितापूर्ण माध्यम क्यों माना गया था। साथ ही लेखक व्यावसायिक नियंत्रण, निष्ठा, सेंसरशिप और बंद तकनीकी प्रणालियों के जोखिमों पर विचार करते हैं। इसलिए यह पुस्तक वेब की उत्पत्ति के साथ उसके मूल्यों और अधूरे वादों को समझने का उपयोगी स्रोत है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एनक्वायर से वैश्विक वेब तक बिखरी जानकारी को संबंधों में बदलने का विचार। पुस्तक की शुरुआत किसी तैयार महान आविष्कार से नहीं, बल्कि सूचना को याद रखने और जोड़ने की व्यावहारिक समस्या से होती है। सर्न जैसे विशाल शोध संस्थान में वैज्ञानिक, परियोजनाएं, दस्तावेज और कंप्यूटर प्रणालियां लगातार बदलते थे। बर्नर्स-ली का आरंभिक प्रोग्राम एनक्वायर इस जटिलता में संबंध दर्ज करने का प्रयास था। इसमें किसी व्यक्ति, दस्तावेज या परियोजना के बारे में जानकारी को दूसरी संबंधित प्रविष्टियों से जोड़ा जा सकता था। इस अनुभव ने एक महत्वपूर्ण डिजाइन अंतर्दृष्टि दी कि ज्ञान हमेशा सीधी श्रेणियों या कठोर फोल्डरों में नहीं रहता। एक ही सूचना कई संदर्भों में अर्थपूर्ण हो सकती है। वेब ने इसी सिद्धांत को बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया। लिंक किसी केंद्रीय संपादक की स्वीकृति के बिना अलग स्रोतों को जोड़ सकते थे। इसका लाभ केवल तेज खोज नहीं था, इससे पाठक अपनी जिज्ञासा के अनुसार रास्ते बना सकता था और लेखक पहले से मौजूद सामग्री के ऊपर नया संदर्भ निर्मित कर सकता था। पुस्तक यह भी दिखाती है कि तकनीकी समाधान अक्सर मानवीय संगठन की समस्या से निकलते हैं। वेब का प्रारंभिक लक्ष्य सूचना को एक जगह जमा करना नहीं, बल्कि विभिन्न लोगों और प्रणालियों के बीच समझने योग्य संबंध बनाना था। यही कारण है कि इसकी मूल कल्पना डेटाबेस, प्रकाशन और संचार तीनों से जुड़ती है। दूसरा, सरल खुले मानक। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और वेब पतों की निर्णायक भूमिका, बर्नर्स-ली वेब की सफलता को किसी एक शानदार सॉफ्टवेयर उत्पाद का परिणाम नहीं मानते। उनके लिए निर्णायक बात ऐसे सरल नियम बनाना थी जिन्हें कोई भी कंप्यूटर और कोई भी नेटवर्क अपना सके। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ने ब्राउजर और सर्वर के बीच संवाद का आधार दिया, जबकि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ने सामग्री के लिए साझा पता व्यवस्था उपलब्ध कराई। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ने दस्तावेज को इस तरह लिखने का तरीका दिया कि उसमें संरचना और लिंक दोनों हों। इन घटकों का महत्व उनके अलग अलग होने में नहीं, उनके साथ मिलकर काम करने में था। पुस्तक का तर्क है कि वैश्विक स्तर की प्रणाली में न्यूनतम, स्पष्ट और सार्वजनिक प्रोटोकॉल अधिक उपयोगी होते हैं। यदि हर भाग लेने वाले को एक ही कंपनी की मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुमति पर निर्भर रहना पड़े तो नेटवर्क का विस्तार रुक जाता है। खुले मानकों ने नए ब्राउजर, सर्वर और वेबसाइट बनाने की बाधा घटाई। इसने प्रतिस्पर्धा को संभव बनाया, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से संगतता को सुरक्षित रखा। लेखक की दृष्टि में मानक केवल इंजीनियरिंग विवरण नहीं है, वे यह तय करते हैं कि कौन प्रकाशित कर सकता है, कौन नवाचार कर सकता है और कौन सूचना तक पहुंच सकता है। इसलिए पुस्तक खुलेपन को तकनीकी दक्षता और सार्वजनिक समानता दोनों का आधार मानती है। तीसरा, पढ़ने के साथ लिखने वाला वेब और इंटर क्रिएटिविटी का अधूरा वादा। वीविंग द वेब में एक विशेष विचार इंटर क्रिएटिविटी है। बर्नर्स-ली के अनुसार वेब की क्षमता केवल लोगों को सामग्री देखने या प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसका गहरा उद्देश्य लोगों को मिलकर ज्ञान बनाने, सुधारने और जोड़ने देना है। इसीलिए आरंभिक वेब की उनकी कल्पना में ब्राउजर और संपादक के बीच कठोर विभाजन नहीं था। उपयोगकर्ता को किसी पृष्ठ का निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं, उसके विकास में संभावित योगदानकर्ता माना गया। यह विचार वेब को पारंपरिक प्रसारण माध्यमों से अलग करता है। अखबार, टेलीविजन या बंद ऑनलाइन सेवाओं में कुछ संस्थाएं प्रकाशित करती है और अधिकांश लोग ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत संपादन योग्य वेब में विशेषज्ञता, स्थानीय अनुभव और अलग दृष्टिकोण एक साझा संसाधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पुस्तक इस संभावना को सरल या स्वतःसिद्ध नहीं मानती। सहयोग के लिए भरोसेमंद पहचान, बदलावों का पता, उचित संदर्भ और समुदाय के मानदंड जरूरी होते हैं। बिना इनके खुलापन भ्रम, तोड़फोड़ या असमान भागीदारी में बदल सकता है। आज सहयोगी ज्ञान मंच इस मूल दृष्टि का आंशिक उदाहरण देते हैं, फिर भी लेखक का बिंदु अधिक व्यापक है। वेब की गुणवत्ता केवल सामग्री की मात्रा से नहीं, इस बात से मापी जानी चाहिए कि क्या लोग विचारों को जोड़, जांच और बेहतर बना सकते हैं। इंटर क्रिएटिविटी इसलिए तकनीकी सुविधा नहीं, वेब के नागरिक चरित्र का सिद्धांत है। चौथा, विकेंद्रीकरण के सामने व्यावसायिक नियंत्रण, सेंसरशिप और निजता की चुनौती। पुस्तक वेब को स्वभावतः मुक्त मानकर निश्चिंत नहीं होती। बर्नर्स-ली पहचानते हैं कि वही नेटवर्क जो व्यापक अभिव्यक्ति और संपर्क को संभव बनाता है, निगरानी, सेंसरशिप और बाजार शक्ति का माध्यम भी बन सकता है। जब कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने स्वामित्व वाले प्रारूपों, ब्राउजर क्षमताओं या वितरण तंत्रों के जरिए नियम तय करने लगती है, तब खुले वेब की संगतता कमजोर पड़ सकती है। इसी तरह सामग्री पर नियंत्रण की बहस में केवल अवैध या हानिकारक सामग्री का प्रश्न नहीं, बल्कि यह भी शामिल है कि निर्णय कौन करेगा और अपील की व्यवस्था क्या होगी। निजता पर लेखक की चिंता भी संरचनात्मक है। वेब पर लोगों के बारे में बनने वाली सूचनाएं अलग अलग संदर्भों से जुड़कर बहुत अधिक प्रभावशाली हो सकती है। सुविधा के लिए दिया गया डेटा यदि बिना स्पष्ट नियंत्रण के जोड़ा या बेचा जाए तो व्यक्ति की स्वायत्तता घटती है। पुस्तक किसी एक अंतिम कानूनी उत्तर का दावा नहीं करती, इसके बजाय वह संतुलन की आवश्यकता रखती है, जिसमें व्यापार को नवाचार का अवसर मिले लेकिन सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत अधिकार पीछे ना छूटे। इस चर्चा की प्रासंगिकता इसलिए बनी रहती है कि वेब की वास्तुकला और उसके सामाजिक परिणाम अलग नहीं है। खुला प्रोटोकॉल उपयोगी है पर पर्याप्त नहीं। प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, उपयोगकर्ता नियंत्रण और सार्वजनिक संस्थाओं की सतर्कता भी जरूरी है। लेखक तकनीक को तटस्थ नियति नहीं, मानवीय निर्णयों से आकार लेने वाली व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अंत में, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और साझा शासन की आवश्यकता। वेब के व्यापक होने के बाद उसकी दिशा केवल उसके आविष्कारक या किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं रह सकती थी। पुस्तक में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की भूमिका इस समस्या के उत्तर के रूप में उभरती है। इसका उद्देश्य वेब मानकों के विकास में उद्योग, शोध संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच सहमति बनाना था। यह व्यवस्था धीमी लग सकती है क्योंकि अलग संस्थाओं के तकनीकी और व्यावसायिक हित भिन्न होते हैं। फिर भी लेखक के लिए सहमति आधारित प्रक्रिया का मूल्य यही है कि कोई एक पक्ष पूरे वेब के नियम अपने हित में न लिख सके। यहाँ शासन का अर्थ केवल प्रशासन नहीं है, मानकों पर निर्णय यह प्रभावित करते हैं कि वेबसाइटें एक दूसरे के साथ काम करेंगी या नहीं, दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच कैसी होगी और नई तकनीकें पुरानी सामग्री के साथ कितनी संगत रहेंगी। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि साझा डिजिटल अवसंरचना को निरंतर देखभाल चाहिए, उसे बनाने के बाद बाजार पर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। बर्नर्स-ली प्रोग्रामरों, कंप्यूटर निर्माताओं और सामाजिक संगठनों से भागीदारी की अपेक्षा रखते हैं। यह अपेक्षा उनके मूल विश्वास से निकलती है कि वेब सार्वजनिक उपयोगिता जैसा संसाधन है, भले ही उसमें निजी सेवाएं और व्यापार सक्रिय रहे। पुस्तक इसीलिए तकनीकी मानकीकरण को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से जोड़ती है। स्वस्थ वेब के लिए नवाचार के साथ जवाबदेह संस्थाएं, खुले परीक्षण और व्यापक भागीदारी आवश्यक है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो यह जानना चाहते हैं कि वेब केवल इंटरनेट पर चलने वाली सेवाओं का समूह नहीं, बल्कि कुछ स्पष्ट डिजाइन विकल्पों और सार्वजनिक मूल्यों का परिणाम है। तकनीक, मीडिया, डिजिटल नीति, सूचना विज्ञान और इंटरनेट इतिहास के विद्यार्थी इससे मूल प्रोटोकॉलों के पीछे का तर्क समझ सकते हैं। वेब डेवलपर और उत्पाद प्रबंधक भी इससे यह व्यावहारिक दृष्टि ले सकते हैं कि संगतता, खुले मानक और उपयोगकर्ता की भागीदारी केवल आदर्शवादी शब्द नहीं है, वे लंबे समय तक चलने वाली डिजिटल प्रणालियों की कार्यशील शर्तें हैं। नागरिक समाज और नीति से जुड़े पाठकों के लिए निजता, सेंसरशिप तथा केंद्रीकृत शक्ति पर लेखक की चिंताएं उपयोगी संदर्भ देती हैं। समान विषय की अनेक किताबें इंटरनेट कंपनियों, .com दौर या तकनीकी उपलब्धियों का बाहरी इतिहास बताती है। वीविंग द वेब की अलग पहचान यह है कि यहाँ वेब का आविष्कारक अपने निर्णयों का उद्देश्य, सीमाएं और भविष्य की चिंता स्वयं स्पष्ट करता है। यह संस्मरण होने के कारण व्यक्तिगत है, लेकिन केवल आत्मकथा नहीं बनता। यह तकनीकी वास्तुकला, संस्थागत सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी को एक ही ढांचे में रखता है। पुस्तक का भविष्य संबंधी हिस्सा अपने प्रकाशन काल की भाषा और परिस्थितियों में लिखा गया है, इसलिए इसे आज के प्लेटफॉर्म युग का पूर्ण विश्लेषण नहीं समझना चाहिए। फिर भी यही दूरी इसे मूल्यवान बनाती है। पाठक वर्तमान वेब की तुलना उसके मूल इरादे से कर सकता है और पूछ सकता है कि खुलापन, संपादन योग्यता तथा विकेंद्रीकरण आज कितने बचे हैं। इस तरह यह इतिहास के साथ आलोचनात्मक मानदंड भी प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं टिम बर्नर्स-ली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।